के अनुपरीक्षा लेक्चर नंबर 139। ओ सिद्धे लिखित जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा है उसमें अभी हम आखिर की जो 12वें नंबर की धर्म भावना है उसको देखते हुए पेज नंबर 28 पर हम आए हैं। यहाँ पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ है, उधर से हम चालू करेंगे। इसके पहले एक बात यहाँ पर बताई गई है कि यह जो गृहस्थ होते हैं जिसको श्रावक कहने में आता है वह पंचम गुणस्थानवर्ती जीवों को कहा है, और उस पंचम गुणस्थानवर्ती जीवों के कैसे कैसे परिणाम होते हैं उस बात की यहाँ चर्चा की है। यहाँ पर जैसे जैसे अंतरंग में स्थिरता होती जाती है वैसे वैसे बाह्य में इस जीव के शुभ परिणाम भी उच्च उच्च दर्जे के होते हैं। जैसा अभी हम अपनी तरफ से देखते हैं, अभी मुझे लगता है, आपके बारे में तो मुझे मालूम नहीं है, कि हम पहले शास्त्र स्वाध्याय के यानी शास्त्र के बारे में या तत्वों के बारे में कुछ जानते नहीं थे, तो हमारा प्रवर्तन यानी हमारा जो कोई बिहेवियर जिसको हम कहेंगे अद्वा तद्वा होता था। अभी कुछ बातें हमारे ख्याल में आ गई हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत सारी बातों के ऊपर सहज रूप से रिस्ट्रिक्शन आ गया है। जैसे पहले जिस दिन चाहो जब ही चाहो सिनेमा जाके देखते थे, होटलिंग करते थे, मैं मेरी बात बता रहा हूँ, अभी ऐसा लगता है अरे ये सिनेमा देख के क्या करना है, 3 घंटे जाने हैं। हम तो एक आने में सिनेमा देखते थे, कितना 6 पैसा, और आधे के टाइम तो फ्री में ही देखते थे। क्यों? कि वहां के जो कोई हमारे सोलापुर के जो कोई क्या बोलते हैं थिएटर मालिक जो होते ना वो हमारे पिताजी को पहचानते थे, अरे अरे नहीं 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 चलो बॉक्स में जाके बिठा देते हमको। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी लगता है कि हम कितना टाइम गंवा रहे हैं। पहले होटलिंग करते थे, अभी उसी होटल में जाने के लिए दिल नहीं करता है, ये सहज हो गया। ऐसा नहीं नहीं मेरे को अभी नहीं जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये तो अपनी अपनी वृत्ति सहज बदलती है। जैसे पहले ये कंदमूल आदि का भक्षण होता था, अभी वो भाव भी नहीं होता है कि हमें खाना चाहिए, अरे इसके बगैर मेरा कैसा चलेगा, कुछ 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 कुछ, कुछ नहीं, सहज होता है। अभी लोग हमको पूछते हैं अरे रात को आपको भूख नहीं लगती, मेरे को तो 10 बजे खाए बगैर नींद नहीं आती। ये अपने डॉक्टर सरलाबेन बोलती है कि मुझे रात को खाए बगैर नहीं तो बहुत बेचैनी होती है। क्या करें, किसको क्या होता है मैं क्या कहूँ, लेकिन हमें तो रात को कभी ऐसा खाने का विकल्प भी नहीं होता है कि भाई अभी खाएं। अभी तो क्या है घर में जब से हम रहना चालू किए यानी से काम धंधा बंद कर दिए हैं तब से तो रेगुलर 2 टाइम का खाना तो मिलता ही मिलता है। और जब हम दुकान में मतलब बिजनेस में थे तब तो कभी शाम का खाना तो मिलता ही नहीं था, वो तो 100%। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अपने में हम अभी सम्यक दृष्टि है नहीं, तब भी हमारे बिहेवियर में अंतर आ गया। और जो स्वयं अपने आत्मा का अनुभव कर दिया है, मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ, राग मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा जानने वाले के उत्कृष्ट राग हो रहा है जो अभी तुम्हारे हमारे नहीं होता है। क्योंकि दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया ना भाई, तो अभी उनके पाप परिणाम घटते जा रहे हैं और पुण्य परिणाम बढ़ते जा रहे हैं। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो ऐसा लिखा है कि जो मुनि होते हैं वो तो अशुभ राग होता ही नहीं उनके। बोलो, ये प्रमुखता से बात की है वो। अभी आपको चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ अंदर, मतलब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है। कहने का मतलब उनके तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है, बाकी संज्वलन कषाय एकदम पतला पतला। कैसा? कि जैसे कि जल यानी कोई ऐसा सरोवर है और उसके हम ऊपर से ऐसी एक लकड़ी से लकीर खींचते हैं तो कितना टाइम रुकेगी? 10 साल, 10 मिनट। अरे वहां से इधर आते दम तक उधर घुसाई जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे जीव जो श्रावक है, उनके जैसे जैसे अंतरंग में स्थिरता बढ़ती जाती है, ऐसे ऐसे उनके शुभ परिणाम भी अच्छे अच्छे उच्च दर्जे के होना चालू होता है। तो देखो थोड़ा अभी कैसा है, देखो अभी बहुत शॉर्ट में बताना चाहूंगा। कोई अभी लौकिक की बात कर रहा हूँ, 5th स्टैंडर्ड में लड़का गया, चौथी पास करके 5th स्टैंडर्ड में गया, वो अभी केवल पहला दिन है उसका, तो उसका मिनिमम अंडरस्टैंडिंग कितना है नॉलेज का, चौथे क्लास का। लेकिन जो 5वें क्लास में 11 महीने से पढ़ रहा है, 12 महीने में से 1 महीने छुट्टी देंगे हम, तो उसका जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो अधिक होगा क्या? अभी पहले दिन में गया है वो अधिक होगा, बता दो। ख्याल में आया? वैसा यहाँ अंतरंग में स्थिरता जैसी हो गई है, ये तो जनरल बोल रहा हूँ, ऐसा कोई नियम नहीं है, तो वह पहली प्रतिमा धारण करेगा, बाद में और अंदर अंदर उग्र पुरुषार्थ करके स्थिरता करेगा, तो ऐसा आस्ते 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 ऊपर की प्रतिमाएं धारण करके 11वीं प्रतिमा वाला भी पंचम गुणस्थानवर्ती, पहली प्रतिमा धारे भी पंचम गुणस्थानवर्ती। वैसा जिसने 5th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया पहले दिन में, वह भी 5वें क्लास में है, और अभी जो परीक्षा देने वाला है वो भी, ऐसा समझ लेना। ये व्यवस्था सिर्फ 5वें गुणस्थान में है। अभी मुनियों में भी थोड़ा अंतर है, थोड़ा बहुत, किसी को मुनि कहेंगे, किसी को उपाध्याय कहेंगे, किसी को आचार्य कहेंगे, लेकिन बेसिकली सभी मुनि ही होंगे 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती। अब हम आगे बढ़ते, यहाँ जो लिखा है, हम आए पृष्ठ क्रमांक 28। ये नीचे से दूसरा पैराग्राफ, पहली दर्शन पड़ीमा छे, ये प्रतिमा को ही गुजराती में पड़ीमा कहते हैं। तेमा मध मांसादिक स्थूल दोषों नो त्याग होई छे। कोई एम कुतर्क करे के दर्शन प्रतिमा वाला ने मध्यादिक नो त्याग कहो, तो त्यार पहला चौथा गुणस्थान ते हो, यानी वो सेवन करता है, ऐसा पूछ रहे। तो कहते हैं एम नथी, चौथा गुणस्थाने पर मध मांस वगैरह ना भक्षण नो भाव होय नहीं। खाने की तो बात बहुत दूर, सेवन करने के भाव ही नहीं आते। मैंने आपको बताया था ना, हमारे ज्ञानचंद जी हमको बोलते थे, हमें तो रात का भोजन करने का विकल्प ही नहीं आता, तो ये इन्हें भाव नहीं था इसलिए विकल्प ही नहीं आवे एम। अरे चौथा गुणस्थाने रहेला पण पात्र जीव ने मध मांसादिनो भाव होय नहीं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहूं छे के मध मांसादिनो जेने त्याग नथी ते जीव तो देशना ने पण पात्र नथी। ये बात हमने कल पढ़ी थी, हाँ, यहाँ नहीं, उसके पहले। यहाँ पढ़ी थी, याद नहीं है। देशना की कल बात बताई थी आपको याद होगा तो, हाँ, पान चौथा गुणस्थान सुधी हजी कोई सूक्ष्म अतिचार लागी जाए छे ने दर्शन परिमा वाला श्रावक ने तो निरतिचार यानी अतिचार जिसमें नहीं है। देखो मल समझते आप, मेल मल, निर्मल यानी जिसमें से मल निकल गया है, विकार निर्विकार, अतिचार यानी कोई दोष, निरतिचार यानी जिसके कोई दोष नहीं है। मद मांसादीनो त्याग होई छे, मांसादीनो सीधो खोराक तो सम्यक दृष्टि ने होय ज नहीं। यानी क्या, अभी ये जैसा कल कहां देखा था हमने, किधर आया था वो कॉडलियर ऑयल, कॉडलियर ऑयल जो होता है वो मछलियों से बनाते हैं तो वह भी एज गुड एज मांसाहार है। तो ये इनडायरेक्ट हुआ, और यहां क्या बता रहे हैं, मांसादीनों सीधो खोराक तो सम्यक दृष्टि ने होय ज नहीं, ने पांचवा गुणस्थाने तो ए कषाय चोकड़ी नो नाश थई गयो छे। बीजी पड़ी व्रत पड़ी मां छे त्यां स्वभावना आश्रय शुद्धता वदता घणो राग मंद थई जाय छे। द्रव्यना राग मंद हो गया का अर्थ क्या हो गया, शुभ भाव बढ़ गए। द्रव्यना आश्रय शुद्धता वदे छे ते अनुसार पड़ी मां होय छे। ये बात समझ गए अपने, क्या नाम बापा, पांचमा गुणस्थान मा शुद्धता ना पण असंख्य प्रकार छे। कितले शुद्धता के असंख्य प्रकार हो बेन, और क्रोध के वो भी असंख्यात, कषाय के भी असंख्यात, पण इसमें अपन डिवाइड कर दे, इसको क्रोध कहना इसको ऐसा। सूक्ष्मता ने ये सूक्ष्म दीर्घ चाहिए, सूक्ष्मताए अनंत प्रकार पड़े छे। पंते बदी शुद्धता अंतरमा द्रव्यना अवलंबने छे, पांचमा गुणस्थाने पड़ीमा होई छे तेमा बीजी व्रत पड़ीमा छे त्यार बाद व्रत होई छे। ओ चार बार छे, चलो बार करी लो, हमने ऐसा सोचा अभी मध्य का त्याग और बार में कहां ले जा रहे हैं, गुजराती शब्द नहीं समझे ना, यानी बारह प्रकार के व्रत होते हैं। हाँ, त्रिजी सामायिक परिमा छे, श्रावक धर्मात्मा अंतर स्वरूप में एकाग्रता नो अभ्यास करे छे, तेमा कोई कोई बार तो श्रावक ने सामायिक वक्ते अंतर मा निर्विकल्प दशा थई जाय छे। अंतर मा न्यायिक स्वरूप में निर्विकल्प लीनता जामी जाए छे। देखो सामायिक का अर्थ ही ऐसा होता है, आप आयकर भरते क्या, अरे सोचने देना मेरे बाप, क्यों बीच में बोलते हो, आय यानी कमाई और उसके ऊपर टैक्स, तो ये क्या है आयिक, इसका सम अधिक आय यानी समता का जो लाभ होता है, कभी होगा जब राग द्वेष के परिणाम नहीं होंगे तब वह सम यानी जो वितरागता है, जो साम्य भाव है, उसका लाभ कब होता है कि सामायिक करने से यानी क्या अंतरंग में स्थिरता होने से। ख्याल में आया, उपवास, उप यानी नजदीक, वास यानी रहना, तो अपने आत्मा में ही रहना, आत्मा में ही निवास करना, उसको उपवास कहेंगे। ये सब अंतरंग में स्थिरता की अपेक्षा से अलग अलग नाम दिए, वो धर्म के ही जुदे जुदे नाम है। तो यहाँ कहते हैं वास्तव में, अभी देखो अभी हमारा क्या नाम है, कोई क्रिकेटर लो ना, सचिन तेंदुलकर, तो जब ये छोटा था तो दिन में चार चार घंटे, छः छः घंटे जो भी उसको पॉसिबल होगा, दो दो घंटे वो क्या बोलते हैं ग्राउंड पे जाके प्रैक्टिस करता था, जब ही तो एकदम बढ़िया क्रिकेटर हुआ। कोई गायक होता है सिंगर, वो रियाज करता है दो दो कलाक, चार चार कलाक, वैसे यह जो पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक है वो अपने स्वरूप में स्थिरता करने के उद्देश्य से सामायिक करता है, यानी क्या एक जगह बैठ के अपने स्वरूप में लीनता का प्रयत्न करता है। और उस समय वो सक्सेस भी प्राप्त करता है, किसमें, स्वरूप में स्थिरता करने की। पहले पहले तो प्रयत्न करेगा प्रयत्न करेगा, और फिर अंतरंग में स्थिर होगा। इसलिए उनको जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट सामयिक के तीन भेद बताए, दो घड़ी, चार घड़ी, एक घड़ी इज इक्वल टू 24 मिनट्स, छह घड़ी दिन में तीन तीन बार। आप कहेंगे दूसरा कुछ काम नहीं करते, अरे उनको कोई काम है नहीं, क्योंकि मैं पर का काम करता हूं ऐसी बुद्धि नहीं उन्हें। ये वहां कह रहे, देखो पहले तो बाह्य में शुभ भाव होंगे, लेकिन उस शुभ भाव से भी हटकर, उसको लांग कर अपने स्वरूप में लीनता करेंगे, वह सच्चा सामयिक। और बाकी सब कैसा है, शुभ भाव। मेरी छोटी बहन जो अमेरिका रहती थी वहां गई, और वहां न मालूम उसको ऐसा सर्कल मिल गया कि जो स्वाध्याय करे, तो मुझको बोलती है पत्र लिख के, तुम सामयिक के ऊपर मेरे को कुछ लिख के भेजना, मुझे यहाँ लोगों को बताना। मैंने कहा ये क्या बताएंगे, ये बात उनके कभी पल्ले पड़ने वाली नहीं कि स्वरूप में स्थिरता रूप धर्म होता है। ये बात जिसको मालूम नहीं है उसको तुम कुछ भी कहो तो क्या फर्क पड़ना है, वो तो दान दो, ये करो वो करो वो करो, ये क्या बोलते हैं आप लोग, संता नहीं क्या है, एक दिन उपवास एक दिन ऐसा कुछ होता है ना, वर्षी तप करो बस उसमें धर्म। ये सामायिक करना यानी क्या, एक जगह बैठ के चुपचाप बैठना ऐसा, लेकिन स्वरूप में लीनता करना रूप जो कोई सामायिक का प्रकार है, वह जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता। आज तक मैंने कुछ नहीं बताया उसको उसके बारे में, लेकिन जब हम प्रवचन में गए तो वहां तो बराबर बताया। अब आगे क्या कह रहे, देखो ये ऊपर से चौथी लाइन पेज नंबर 20 लाइन, अंतर्मा न्यायिक स्वरूप मा निर्विकल्प लीनता तई जाय जामी जाय, यानी विकल्प रहित। विकल्प रहित में दो अर्थ होते हैं, ये राग द्वेष के परिणाम रहित एक विकल्प रहित, और एक विकल्प यानी भेद। तो भेद रहित अखंड आत्मा का अनुभव करना वह भी निर्विकल्प दशा कहलाएगी। चौथी प्रोषद उपवास परिमा छे, तेमा स्वभावना आश्रय विशेष शुद्धता प्रकटी छे, जेम जेम परिमा वधे छे तेम तेम स्वभावनो अनुभव वत्तो जाय छे, ने प्रत्याख्याना वरणनो अनुभाग घटतो जाय छे। ये प्रत्याख्याना वरणनो अनुभाग घटतो जाय छे, इसका अर्थ क्या लेना, कौन बतावे, लक्ष्मी बेन आप बताएंगे। हाँ, यानी उसका अर्थ क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, शुभ भाव बढ़ेगा। देखो देखो, हाँ जी, पंचम गुणस्थान वो पहले शुभ भाव बढ़ेगा, और स्वरूप में स्थिरता, वहां कोई कर्म का अनुदय कहो आप। अभी आपने क्या बताया, जीव के परिणामों की बात करी ना आपने, तो शुभराग मंद यानि प्रत्याख्यानावरण मंद होने से स्थिरता होगी, यानि आपने नक्की क्या किया, राग करते करते यानि ओछा राग करते करते स्वरूप में स्थिरता, ख्याल में। आप ऐसा कहें कि प्रत्याख्यानावरण कर्म जो है वो ढीले पड़ गए तो स्वरूप में स्थिरता अधिक हो गई, तो निमित्त रूप से आपका कथन सही है।
अनुभाग जो बात है ना वो कर्म की ही बात है,
आपने
क्योंकि जीव के कषायों में तो कोई अनुभाग नहीं लगाते,
आपने जीवों के भावों पे लगाया, इसलिए मैंने कहा कि ऐसा नहीं। हाँ। क्या? अच्छा।
देखो प्रत्याख्यानावरण ये शब्द है ना, किसके ऊपर आवरण है, वो शब्द कैसे तैयार हुआ, तो प्रत्याख्यान ने सकल संयम जिसको नहीं हो सकता है, ऐसा वहां वो कर्म बाकी है, तो वो कर्म के भी बहुत सारे वेरिएशन, जैसे हमने ज्ञानावरण में घटित करते, जहां आवरण ज्यादा वहां ज्ञान कम, उघाड़ कम, ऐसे यहां प्रत्याख्यानावरण आवरण का अनुभाग ज्यादा तो वहाँ ये जो त्याग के जो वेरियस लेवल सभी हमने देखे हैं, त्याग यानी बाहर का त्याग नहीं समझना, वो स्थिरता वगैरह सब उसके साथ ले लेना, तो वहाँ आवरण ज्यादा है तो नीचे की परिमा है और आवरण कम है तो ऊपर की प्रतिमाएं हैं, और बिल्कुल प्रत्याख्यान आवरण नष्ट हो जाएगा तो सातवां गुण स्थान हो जाएगा। ख्याल में आई नहीं बात? हाँ वही तो, शुभ भाव ही बढ़ेंगे ना,
शुभ भाव बढ़ना है,
कर्मों के
मंद मंद होना,
कर्मों का
आपने बताया कि प्रत्याख्यान आवरण राग कम कम हो रहा है, यानी कम हो रहा है यानी राग की मंदता हो रही है यानी शुभ भाव बढ़ रहा है।
कर्मों की तरफ ले लो या जीव के परिणामों की तरफ, यहाँ तो जीव के कषायों की मंदता की ओर जा रहा है ना, विशुद्धि बढ़ रही का अर्थ क्या है, मंदता की ओर जा रहा है, ज्यादा में ज्यादा मंदता हो रही है।
हाँ बोलो भाई। हाँ वो परिपूर्ण, देखो आपका पूछना ऐसा है कि शुद्धता एकदम बढ़ जाएगी यानी वह जीव पूर्ण राग रहित होगा, तो उस समय उसको एक भी कषाय चौकड़ी का सद्भाव नहीं रहेगा, उसको हम दूसरी भाषा में कहेंगे यथा क्या चारित्र की प्राप्ति हुई है, उस समय क्रोध मान माया लोप में से जो 16 है वो सबके सब जाएंगे, 9 कषाय 9 है वह भी नहीं रहेंगे, वह जीव वितराग होगा, ये अवस्था 11वें और 12वें गुण स्थान में होगी, उसके पहले नहीं होगी। हाँ है ना, तो वो तो निमित्त का कथन है, वही तो मैंने आपको बताया,
मैंने वितरागता बढ़ती है ना, स्थिरता बढ़ती है तो कर्म का अनुभव वहाँ घटता है। शुभ राग बढ़ता है इस तरह से मत सोचो, कषाय मंद हो रहे इस तरह से सोचो, वितरागता बढ़ रही है तो कषाय मंद हो रहे, तो मंद कषाय को ही हम शुभ राग कहेंगे ना, अशुभ तो बिल्कुल घट ही गया है, पर जो कोई राग बाकी है वो शुभ राग है।
आप क्या कह रहे हैं, ये जो आपका स्टेटमेंट है जो बहन ने अभी बताया कि शुभ राग की यानी कषायों की मंदता होती है, हाँ ऐसा कहो तो
हाँ, उल्टा ऐसा आप जो अभी कह रहे हैं ना वैसा कहो,
वो बराबर
हाँ।
है, लेकिन ऐसा कहेंगे कि राग मंद मंद होते जा रहा है हाँ, तो क्यों के भाई, क्यों नहीं कि उसके कारण शुद्धता बढ़ते रह रही, ये कोई बात नहीं, ऐसा अगर आपकी मान्यता हो तो जरा हटा दो बस, बाकी आपकी वैसी नहीं होगी लेकिन आपके बोलने से वैसा ही प्रतीत हुआ, कोई बात नहीं जाने दो, हमारी मिस्टेक है समझ लो, बस खुश रहना। भाई सुनो मैं फिर से बताता हूँ, देखो जो हमारे को तत्व मिला है कौन सा, कि राग करते करते वितरागता नहीं होगी, तो अब हम ऐसा मानेंगे कि उसने राग मंद मंद किए इसलिए उसकी शुद्धता बढ़ी, हाँ ये बिल्कुल सही नहीं है। अब जैसा अश्विन भाई ने बताया कि यहाँ शुद्धता बढ़ रही है वहाँ इफेक्टिवली राग कम होते जाएगा, ये उल्टा कॉन्वर्स इज ट्रू, लेकिन ऐसा
ये देखो क्योंकि ये जो अनुभव हाँ बढ़ रहे, एक में ऐसा अर्थ लेना कि वो उसकी क्वालिटी बढ़ रही है ऐसा ले लो, हाँ भाव बढ़ रहे ऐसा मत ले लो हाँ। जैसे मुनि है गृहस्थ के लिए तो देव पूजा या ये वो सारा आडंबर है, मुनियों के लिए तो वो कुछ भी नहीं है, तो उस अपेक्षा से करेंगे तो शुभ क्रियाएं तो घट गई उनकी, उस दृष्टि से बात करेंगे तो जो श्रावक के जो है ना अभी जो प्रचार प्रसार ये वो देट इज नॉट द, उनके भाव हो तो हो करेंगे तो करेंगे परंतु उसमें ऐसे नहीं जुड़ेंगे, वो तो तीव्र कषाय का कार्य है जो श्रावक में होता है, जैसे तीर्थों की कोई उसका उद्धार करना है, मंदिर बनवाना है, यात्रा का संघ निकालना है, ये श्रावक की बात है। मुनि यात्रा करेंगे, परंतु वो किसी का ये सब लोगों को लेके मुझे चलना है या मुझे उनको ये प्रवचन डेली देना है, ऐसा कोई उनके लिए कोई जरूरी नहीं है, वो नियम नहीं होता उनके लिए। तो उस अपेक्षा
प्रश्न जो है उसमें मैं बताता हूँ आपको, यहाँ शब्द
वो शुभ भाव हो रहा है, वो कमजोरी है उसकी। हाँ, बन रहे हैं तो उसका फल भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, इन्हें सजा सजा भुगतनी पड़ेगी स्वर्ग की।
देखो यहाँ गड़बड़ क्या हो रही है, शुभ भाव बढ़ रहे हैं आप कह रहे हैं, और यहाँ लिखा है कि राग मंद मंद हो रहा है। सुनना, दोनों का अर्थ एक ही है। देखो जब तीव्र राग होता है, मान लो इसने कुछ यहाँ मेरे से कुछ ऐसी उलट पुलट बात कर दी और मैं एकदम गुस्सा आ गया, तो मुझे गुस्सा आया, तीव्र कसाय हुए, तो वहाँ पाप में मैं चला गया। अब उसने कुछ भी मेरे को गाली दी और मैं चुपचाप बैठा और उसको समझाया ऐसा नहीं करते, तो यहाँ राग क्या हो गया, छोटा छोटा मतलब मंदता की ओर चला गया। उस समय शुभ भाव भी उतने रहे, क्योंकि नहीं तो मैं दो जा मारा मारी करे, ऐसा करे वैसा करे, ऐसी तो बात नहीं हुई। इस तरह से आप इसमें भी घटित करना, यहाँ जब हम कह रहे हैं कि राग मंद मंद होते जा रहा है, लेकिन राग की मंदता होगी तो शुभ राग की बढ़ोतरी होगी,
यानी हायर क्वालिटी के हो गए वो।
अभी आप ऐसा ले लो, अभी ऐसा देखो ना, जिसको अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ है और जिनके संज्वलन क्रोधमान माया लोभ है, उनमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता लगता है कि नहीं, क्या बहुत कुछ लगता है? जो कुछ लगता है फर्क तो निश्चित है ना। वैसे चौथे गुणस्थान पांचवें गुणस्थान वर्ती जीवों के पांच जो पांचवें गुणस्थान में है ना, तो उसमें 11 प्रतिमा जो है, तो पहली प्रतिमा वाली जीव के जो शुभ भाव होंगे या राग की जो मंदता होगी, उससे भी छठी कहो सातवीं कहो आठवीं प्रतिमाधारिक जीवों के राग की मंदता और रहेगी, और शुभ भाव वो उच्च दर्जे का होगा। उसको आप बड़ा शुभ भाव कहो, अच्छा शुभ भाव कहो, जो भी आपको कहना है।
ये बढ़ रहे कहने से आपको
आनंद होता है तो बढ़ा दो।
नहीं, विशिष्ट शुभ राग भी मिट जाएंगे, विशिष्ट शुभ राग भी मिट जाएंगे। कैसे? ऐसा नहीं, अभी ऐसे है ना कि पहले में परस्त्री त्याग कर दिए, अभी उसको स्वस्त्री का त्याग नहीं है। ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा ली तो स्वस्त्री का भी त्याग हुआ उसका, यानी ऊपर वो भी जो कुछ उसके जो पहले भी जो त्याग हुए थे उससे जो आगे बढ़ा ना, तो उतने तो उसके त्याग भी हो गए, उसके शुभराग भी मंद हो, यानी उसमें भी मंदता होगी। चौथे गुणस्थान वाला जो शुभराग कर रहा है, देव गुरु शास्त्र के बारे में जो कोई उसकी बातें चल रही है, उसके बारे में जो उसके शुभ राग हो रहे हैं, मुनियों के भले दर्जा उसका उच्च है, परंतु उनके वो शुभ राग उनके नहीं होंगे। मंदिर बंधाने का नहीं होगा, मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने का भाव उनके नहीं होगा, जो गृहस्थ को हो सकता है। मुनियों के लिए वही जो है वो उनके लिए वो अशुभ कहलाएगा, वो मुनि स्वरूप नहीं है उसका, मुनियों का स्वरूप नहीं है वो। हाँ, बढ़ने ने वो भी विशिष्ट तो कम ही हो जाएंगे। तीव्र
मैंने फिर से बताया क्वालिटी
स्थिति नहीं बढ़ती है,
कहते हैं
स्थिति घटती है,
क्वालिटी के शुभ भाव होंगे।
स्थिति तो सभी की कम हो जाएगी।
हाँ,
और भी कम हो जाएगी। हाँ, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ रहा है,
अनुभाग बढ़ते हैं ना। देखो पहले में पहले ये समझना, यह जीव शुभ भाव जानबूझकर नहीं कर रहा है, ना के होने वाले राग का स्वयं को कर्ता मान रहा है, क्योंकि सम्यक दृष्टि है ना भाई, तो वो तो आने वाले परिणामों को जानेगा, कि ये ऐसे परिणाम मेरे में हो रहे हैं, वो बिल्कुल ट्राई नहीं करेगा, नहीं इससे भी बढ़िया मेरे को सुपर राग होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, उसका सम्यक तो नहीं रहेगा, क्योंकि उसने राग का कर्ता माना और राग को लाभदायक माना। देखो भाई, स्वामी जी तो कई बार बताते थे, यह जो हम जिसको कहेंगे क्या कहते हैं द्रव्यलिंगी मुनि जो होते हैं, उनके तो एकदम आगम के अनुसार 28 मूल गुण पालन करने का जो कोई बाह्य आचरण है वो इतना परफेक्ट है जैसे भावलिंगी संतों के होता है, ख्याल में? वो तो ऐसा कड़क उदाहरण देते थे कि ऐसे शरीर पे किसी चाकू से ब्लेड से आप घाव करो और उसके ऊपर नमक मिर्च छिड़को, फिर भी आंख की कुनी भी लाल नहीं होगी, ऐसे शांत परिणाम वाली, फिर भी वह मिथ्या दृष्टि क्यों के उसने शुभ राग को भला माना, करने जैसा माना, और जितना मैं करूंगा उतना मुझे लाभ होगा, यहां तक तो नहीं रुका, इससे मेरा मोक्ष मार्ग आगे बढ़ेगा, ये तो बिल्कुल खुटी मान्यता में चला है। इसलिए वह जीव भले न नौवे गृहवेग तक जावे, उसको किंचित मात्र अतीन्द्रिय सुख का वेदन नहीं है। स्वामी जी ने बहुत बार ये बात बताई है, वो कितनी बार तुम कौन सा भी शास्त्र निकालो, मुनिव्रत धार अनंत बार गृहवेग उपजायो, बताएंगे बताएंगे, एक ही गाथा में तीन तीन बार बताएंगे। हमें इतना ही ध्यान रखना है कि यह जो कोई सम्यक दृष्टि जीव है वह स्वयं को राग का कर्ता मान ही नहीं सकता, क्योंकि वो परभाव है ना भाई। समयसार वाले ने तो उसको पुद्गल का कह दिया, खलास। क्योंकि देखो, शरीर में नहीं हूं, ये परद्रव्य है, ये राग जो है वो मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए उसको हटा दिया है। पर्याय में भले होता है वो भी अपनी ही द्रव्य में अपने ही पर्याय है, फिर भी स्वभाव रूप नहीं है, स्वभाव बिल्कुल विरुद्ध है स्वभाव से, इसलिए उसको ये मेरा नहीं है ऐसा कह दिया। ऐसा कहते हुए वो होने से कोई फायदा होगा ऐसा मानेगा तो वो मिथ्यात्व है। बस इतना हम बिल्कुल पक्का, जैसा बोलते ना गांठ मान दे, पहले के जमाने में वो शेंडी थी उसको गांठ बांध देते कोई भी, या महिलाएं अपने पल्लू को गांठ बांधते थे, अभी साड़ी कहाँ रही, क्यों तो पल्लू कहाँ अभी। चलो चलो आगे,
ये तो दूसरा भी उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे कोई समय दृष्टि है, 6-6 घंटे वो प्रचार प्रसार में योगदान दे रहा है या कोई प्रवचन दे रहा है, अब वही 5वें गुणस्थान में गया, सामयिक प्रतिमा लिया, तो क्या करेगा, 2-2 घड़ी 3 टाइम उसके तो सामयिक चलेगा, वो भी शुभ भाव है, उसमें तो अंतरंग स्थिरता तो इतनी है ही नहीं है, कभी कभी होगी उसमें, तो वो वाला जो 4वें गुणस्थान में जो प्रवचनों में जुड़ता था, अभी वो सामयिक यानी वो तो छूट गया ना उसका, तो वैसे जो शुभ राग है वो जो तीव्रता वाले है कषाय, वो कषाय की तीव्रता है, दोनों ही शुभ भाव है, शुभ भाव में भी तीव्रता कम होगी तो मंदता की ओर बढ़ेंगे।
आपको ये कहना है दूसरी भाषा में, मैं आपका उदाहरण बता रहा हूँ, 4वें गुणस्थान वर्ती जीव, वह न लड़ाई वाड़ी की बात नहीं है, ये प्रवचन देता है मान लो, और उसी वक्त ये 5वां गुणस्थान वर्ती सामायिक प्रतिमाधारी होगा, वो प्रवचन में नहीं बैठेगा, वो अपने सामायिक करेगा, क्यों के प्रवचन करते करते कोई आत्मानुभूति करने वाला नहीं है, 4वां गुणस्थान वर्ती क्यों न हो गए, ये मुनि दशा में पॉसिबल है कदाच। और 5वां गुणस्थान वर्ती क्या करेगा, स्वरूप में लीनता करने का प्रयत्न करेगा, तभी वो कभी कभी सक्सेसफुल भी होता है, लेकिन प्रवचन सुनते सुनते या क्या कहें हम देते देते ये पॉसिबल नहीं,
सुनते सुनते तो पॉसिबल है क्योंकि बीच में उसका उपयोग छूट जा सकता है,
इसलिए कह रहे हैं कि उच्च दर्जे का हायर क्वालिटी वाला आपकी भाषा में सुपीरियर शुभ भाव होते हैं, उसको हम दूसरी भाषा में कहेंगे राग की मंदता होती है,
यानी शुभ रागों की भी तीव्रता कम हो जाएगी। हाँ
चलो अभी आगे जाएंगे ना, नहीं तो ये राग में अटके रहेंगे तो फिर क्या फायदा। हाँ ચોથી પ્રોષદ ઉપવાસ પ્રતિ પડીમાં છે, તેમાં સ્વભાવના આશ્રય વિશેષ શુદ્ધતા પ્રગતિ છે. જેમ જેમ પડીમાં વધે તેમ તેમ સ્વભાવનો અનુભવ વધતો જાય છે ને પ્રત્યાખ્યાના વરણનો અનુભાગ ઘટતો જાય છે. એ આવરણ કી બાત હૈ. જેમ જેમ ચૈતન્યનો અનુભવ વધતો જાય છે તેમ તેમ જડનો અનુભાગ ઘટતો, જડ યાને દ્રવ્ય કર્મ, હા આઠ કર્મ હે ને, ક્યાં કહા આપને, હા કર્મો કી અનુભાગ ઘટતો જાય છે. આવો નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે. કોનામાં? જીવના પરિણામમાં અને ત્યાં કર્મના ઉદય અને આપણા શું કહેવાય છે અનુભાગ ઘટવામાં. પાંચમા ગુણસ્તાને અનંતાનુબંધી તેમજ અપ્રત્યાખ્યાનાવરણી કશાયનો તો અભાવ છે, જિસકો હમ દો ચુકડી કા અભાવ બોલતે વો બતા દિયા. ને જેમ જેમ શુદ્ધતા વધતી જાય છે તેમ તેમ પ્રત્યાખ્યાનાવરણીય કશાય પણ ઘટતો જાય છે. તો એ સામાયિક હંમેશા હોય છે. પ્રોષદ ઉપવાસ હંમેશા એને ડેલી, હા
હંમેશા ને દિન મેં તીન ટાઈમ સામાયિક હોગા એને ડેલી, ઓર પ્રોષદ ઉપવાસ પર્વ તિથિ મેં.
પ્રોષદ ઉપવાસ પર્વ તિથિએ હોય છે ને છેવટે સંથારો હોય હોય છે. છેવટે એટલે એટ ધ એન્ડ ઓફ વન્સ લાઈફ, રાઈટ? હા જી, સલ્લેખના, સલ્લેખના,
સલ્લેખના જીસકો હમ કહેતે.
આ રીતે શ્રાવકને ચૈતન્ય સંથારો
ક્યા કહા?
ઉનકા પૂછના હૈ કે શ્રાવક સલ્લેખના લેતે હૈ ક્યા?
હા હા,
એક મિનિટ. અજીત મતી અમ્મા આપકો માલુમ હૈ ના, ઉનોને ભી યે સલ્લેખના લી થી. અબ વો બાકી બાત ઉનોને લી થી વો પંચમ ગુણસ્થાન વર્તી થી ના, યાને પાંચવે ગુણસ્થાન વર્તી જીવ સલ્લેખના લેતે હૈ. આ રીતે શ્રાવકને ચૈતન્યના અનુભવનો અભ્યાસ હોય છે. લિખાના ચૈતન્યના અનુભવનો અભ્યાસ, એને ઉનકો વો ક્યા બોલતે હંમેશા ચલતા રહેતા હૈ અભ્યાસ છે અને ક્યા હાવ હાવ. વ્રત અને પડીમાં તે તો અંતર સ્વભાવની શુદ્ધતાના પ્રકારો છે. તેને બદલે અજ્ઞાનીઓ શુદ્ધિને ભૂલીને બહારના ત્યાગમાં ને રાગમાં જ પડીમાં વગેરે માની બેઠા છે. જેમ એક બાઈ ચોખા ખાણતી હતી, ત્યાં ચોખા નીચે હતા ને ઉપર ખોતરા દેખાતા હતા. તે જોઈને બીજી મૂર્ખી બાઈએ વિચાર્યું કે વિચાર્યું અને સોચા એસા કે આ બાઈ ફોતરા ખાંડતી લાગે છે, એમ જાણીને પોતે પણ ઘેર જઈને ફોતરા ખાંડવા બેઠી. તેમ ધર્મી જીવને તો અંતર સ્વભાવની દ્રષ્ટિપૂર્વક ભક્તિ વગેરેનો ભાવ આવે છે. ભગવાનનો જન્મ થતાં ઇન્દ્રો આવીને ભક્તિથી તાંડવ નૃત્ય કરે છે, પણ તે વખતે અંતર સ્વભાવમાં દ્રષ્ટિ પડી છે. ઓર હમ જો યે દેખતે હૈ ના ક્યા બોલતે જન્મ કલ્યાણક આદિ પંચ કલ્યાણક મેં, તો સામે વિડીયોનો લાઇટ આવે તો એકદમ અંતરથી નાચવાનો ઉલ્લાસ આવે છે એસા. એ મેને અનુભવ ક્યા હો, નાગપુર મેં હમ થે તો હમકો બુલાયા ફોટો નિકાલને કે લે, તો વો વહાં સે ઇશારા કરતે થે અભી લાઇટ બંધ કર, તો હમ લાઇટ બંધ કરતે સબકા ડાન્સ વાન્સ બંધ હોતા થા. और भगवान उधर खड़े और नाचने वाले अपने तरफ, कैमरा में मुंह दिखना चाहिए ना कौन नाच रहा है. भक्ति थी तांडव नृत्य करे छे, पण ते वक्ते अंतर स्वभाव में दृष्टि पड़ी छे. त्या अज्ञानी एकली बाहर नी क्रिया ने अने राग ने देखे छे ने पोते भक्ति करीने तेने धर्म माने छे.
बाहर नी पर... बहर नी हुआ है.
बाहर नी बहर आ गया उसको. પણ અંદર તેને ભાન નથી,
અંદરનું તેને ભાન,
અંદરનું તેને ભાન નથી. જ્ઞાનીને તો અંદરની દ્રષ્ટિ પડી છે, તેને લીધે ધર્મ થાય છે. કઈ રાગને લીધે કે નાચવાને લીધે તેને ધર્મ થયો નથી. અભી આપણ યહાં રાગને લીધે ઇતના લેના, બાકી આપણ તો અભી આરામસે બેઠે ને. ચોથા ગુણસ્થાને એવો ભક્તિ પૂજાનો ભાવ આવે છે જરૂર, પણ ધર્મ તો અંતર સ્વભાવની રૂચિ અને એકાગ્રતામાં છે. अज्ञानी भारतीय धर्म मानी ले छे ते वस्तु स्वरूप ने समझो नथी। पांचमी परिमामा प्रासुक आहार ले छे एटले त्यां सचित्त आहार नो भाव होतो नथी। अंतर स्वभाव मां एटले वितराग भाव प्रकट्यो छे। अंतर स्वभाव मां एटलो वितराग भाव प्रकट्यो छे के त्यां सदोष आहार नो विकल्प ज आवतो नथी। तेथी सचित्त आहार छोड्यो एम कहेवाय छे। प्रासुक आहारी एम कहेवामां आहार करवा करवा आहार करवा ऊपर वजन नथी, पण सचेत आहारनो भाव तेने होतो नथी एम बतावू छे। गृहस्थना धर्म अपेक्षाए त्यां सचित्त त्याग प्रतिमा ते छठो धर्म छे। पहेलो धर्म शुद्ध सम्यक दर्शन छे, तेना वगर तो बीजो कोई पण धर्म होतो नथी। आहार तो जड़ छे, तेने आत्मा त्रण काळमां कदी ग्रह तो के छोड़तो नथी। अज्ञानी कहे छे अनादि काल से आत्मा कभी कर्म से छूटा नहीं। आई कहे छे निश्चय से अनादि काल से आत्मा कभी कर्म को छूटा नहीं। देखो दोनों की अपेक्षा देखने की नजरिया जुदी जुदी हो सकती है, लेकिन यहाँ उसकी मान्यता ही खोटी है। कहना बताना ये बात अलग है। यहाँ जो कह रहे हैं कि अनादिकाल से आत्मा कभी कर्म से छूटा ही नहीं है, तो पर्याय की अपेक्षा से कह रहे हैं कि आज नया 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 कर्म बांधते बांधते अभी तक वो कर्म से रहित नहीं हुआ है। और अनादिकाल से जो द्रव्य की अपेक्षा से देखेंगे तो कहते हैं आत्मा कभी कर्म को छूता ही नहीं है, कर्म आत्मा को छूता ही नहीं। क्यों नहीं छूता बहन? वाह वाह वाह, दोनों में अत्यंत अभाव है। आत्मा जड़ पदार्थों ने कदी स्पर्शतो नथी, तो ते आहार ने ग्रह के छोड़े ये बात क्या रही? अमोल तुम रात को खाना खाते हो क्या दिन में कभी? दोनों टाइम तुम रोज रोज आहार करते हो? यहाँ बोलते नहीं है। देखो आहार ने ग्रह के छोड़े ये बात क्या से की? आपने पर्याय दृष्टि से बताया, यहाँ निश्चय से बता रहे स्वभाव की अपेक्षा। घबराना नहीं, हम ये क्यों पूछ रहे हैं? समझने के लिए क्या हम क्यों बोलते हैं, कैसा बोलते हैं और हमारे बोलने के पीछे क्या अंतर है, ये समझ में आना चाहिए। देखो आप रात को भोजन करो या मत करो, परिणाम तो आपके हैं, फल हमें लगने वाला है ना। हाँ बस इतनी बात समझ लेना, जो जीव जैसा परिणाम करे वैसा उसको फल मिले। छठी पड़ी मामा रात्रि भोजन त्याग छे, आ गई बात। सातवीं पड़ी मामा मैथुन त्याग छे। आठवीं पड़ी मामा आरंभ त्याग छे। नवमी पड़ी परिग्रह त्याग छे। दशमी पड़ी मामा अनुमति त्याग छे। ने अग्यारमी पड़ी मामा उद्दिष्ट त्याग छे। आ प्रमाणे शुद्ध सम्यक दर्शन सहितनी अग्यार परिमाओ मळीने कुल बार भेद गृहस्थ धर्मना छे। जो आ बदा भेदो अंतर स्वभावना अवलंबने शुद्धता पूर्वकना छे। स्वभावना भान विना एकलो शुभराग करे तेने काई परिमा न कहवाय। ये बिल्कुल बात ध्यान रखना। क्या लिखते हैं? स्वभावना भान यानी स्वभाव के अनुभव, एना विना एकलो केवल शुभ राग करे तेने काई पड़ीमा न कहवाय। पहला कुदेव कुगुरु कुशास्त्र नी मान्यता छूटी जाए। सम्यक दर्शन ना 25 दोष रहित शुद्ध सम्यक दर्शन तो प्रथम होवु जोईए। ज्ञान मद कुल मद वगैरह दोषो सम्यक दृष्टि ने होय नहीं। केवल ज्ञान नो पिंड आत्मा छे, तेनी जेने दृष्टि थई तेने अल्प ज्ञान नो के कुल वगैरह नो काई कुल वगैरह नो गर्व आवेज नहीं। अंतर स्वभाव में चैतन्य ना निदान देख्या हो एने आत्मानुभव किया हो ते जीव बारना पदार्थ थी पोतानी मोटाई मानतो नथी। नियमसार मां कहे छे के जे जीव विदविद कर्म विदविद लब्धी छे विदविद अरे नाना जीवा नाना कम्मा। ते कारणे निज पर समय सह वाद परिहर्तव्य छे। शू कहे छे? नाना प्रकारना जीवो छे, नाना प्रकारनु कर्म करे छे, नाना प्रकारनु कर्म छे, सॉरी नॉट करे छे, नाना प्रकारनी लब्धि छे, तेथी स्वसमयनो अने परसमयनो परसमयो साथे તેથી સ્વસમયો અને પરસમયો સાથે સ્વધર્મીઓ અને પરધર્મીઓ સાથે વચન વિવાદ વર્જવા યોગ્ય છે।
વર્જવા યોગ્ય ને ત્યાગવા યોગ્ય છે, એને કરને જૈસા નહીં હૈ। એ સમય કા અર્થ ક્યા લે યહાં પર નલિનભાઈ? હા, ધર્મ એને મત, એ શુદ્ધાત્મા કી બાત નહીં હૈ। સ્વ મત એને જીન મત ઓર અન્ય મત અને વાદ વિવાદ કર્તવ્ય નહીં। હા, ના આપસ મે ભી વાદ વિવાદ કરને યોગ્ય હૈ, ના પરમતો કે સાથે તો હૈ નહીં હૈ, પરંતુ જૈની જૈનીઓ મે મુક્ષ મુમુક્ષુઓ મે વાદ વિવાદ કરને યોગ્ય નહીં હૈ। આપ ચર્ચા કરો, પ્રશ્નોત્તર કરો, સત્સંગ કરો, ઉસકે ના નહીં હૈ વાદ વિવાદ મે, ક્યોંકિ ઉસમે તો કુછ ઉપજતા નહીં ને। કોઈ સમજના ચાહતા હૈ, ઉસકો સમજાના અલગ બાત હૈ, તો વો અપના પોઈન્ટ પકડ કે બેઠેગા, મેં અપના પોઈન્ટ, તો ઉસમે તો કુછ ફલિત હોને વાલા હૈ નહીં હૈ। તો ઇસલિયે કહેતે હૈ કે વાદ પરિહર્તવ્ય છે, વાદ ટાળને યોગ્ય છે,
વર્જવા યોગ્ય છે। દેખો બાત એસી હૈ, સ્વામીજી કઈ વાર કહેતે થે વાદ વિવાદ કરે સો અંધા, કોટેશન દેતે થે
સમયસાર નાટક,
નાટક સમયસાર મેં તો કહે રે, વાદ વિવાદ જો કરતા હૈ ઉસકો કોઈ અંધા હૈ નહીં, વો કુછ સમજદાર નહીં હૈ। ઓર કોઈ આકે કહેતે હૈ કે હમકો આપસે વાદ વિવાદ કરના હૈ, સ્વામીજી કહેતે કે માફ કરના, મેં કિસી સે વાદ વિવાદ નહીં કરતા, તો તુમ ડર જાઓગે, લોગ કહેંગે કે તુમ ડર ગયે હૈ। બોલે હા, જો ભી લોગોં કો કહેના કહેને દો। બોલતે ચશ્મે સે જ્ઞાન હોતા હૈ કે નહીં, થઈ ગઈ ચર્ચા, બોલતે વહી હટા દેતે। તો ચશ્મે સે જ્ઞાન હોતા હૈ કે નહીં? તો પુસ્તક સે હોતા હૈ નહીં? અચ્છા ચાલો, અબ કહેતે નિધિ પામી ને જન કોઈ, નિજ વતને રહી પડ ભોગ મે, તેમ જ્ઞાની પરિજન સંગ છોડી, જ્ઞાન નિધિ ને ભોગ મે। ક્યા કહા? એસા કહેતે હૈ કિસી કો બહોત બડા ક્યા બોલતે ધન મિલ ગયા,
ખજાના
ખજાના મિલા હો, તો ક્યા કરેગા? આપને કઈ અનનોન જગહ પે જાકે વહાં રહેગા હો, ક્યોંકિ રહેગે તો અરે મેં તેરા ચાચા હું, બોલે મેં તેરી માસી હું, મેં ફલા હું, મેં અરે આપ આપન એક ઘર કે, આપ તુમ છોટે થે હમારે ઘર મેં આતે થે, એસા કરકે ઉસકો લૂટને કો દેખેંગે। તો કહેતે નિધિ પામી ને જન કોઈ, નિજ વતને રહી ફળ ભોગવે। તો યહાં ક્યા કહેતે? નિજ વતન કોણ સા હૈ? અપને સ્વભાવ મે સ્વરૂપ મે યહ નિજ વતન હૈ। અમે ક્યાં પરદેશમાં આહી પડ્યા, તો સ્વવતન મે જાયેંગે, સ્વદેશ મે જાયેંગે, કઈ નિધિ પામીને? તો સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર રૂપ જો રત્નત્ર, તીન રત્નો કી પ્રાપ્તિ હોઈ હૈ તુમકો, વહાં જવેરી બજાર સે આતે આતે ઓપેરા હાઉસ કે સામને ઇતના બડા રત્ન મિલા, તો ઘર મેં બહાર ટાંગ દોગે કે નહીં? એસા નહીં, ક્યા કરોગે? અરે છુપા કે રખોગે, કિસકો? હા, ઇસકો ભી નહીં બતાઓગે? હા, ક્યું? લેડીઝ લોગ કે કોઈ મુંહ મે બાત નહીં રહેતી, ફટાફટ બોલ દેતે, ઉસકો કૈસા એકદમ છુપા કે રખેંગે। વૈસા કહેતે હૈ તેરે કો તેરી નિધિ પ્રાપ્ત હુઈ હૈ, નિજ સ્વભાવ કા તુઝે અભી અનુભવ હુઆ હૈ, એસી અપૂર્વ નિધિ તુને પ્રાપ્ત કી હૈ, તો અભી આપણે હિ સ્વરૂપ મેં રહે કે ઉસકા તું અતિન્દ્રિય આનંદ કા ભોગ લે લે। તેમ જ્ઞાની, અભી ક્યા કહેતે હૈ? વૈસા જ્ઞાની ક્યા કર રહે? પરજન સંગ છોડી, યાને અભી સબ મેં જાકે મિલતે નહીં, આજ ઇધર ગયે આજ ઉધર ગયે નહીં બોલતે, જ્ઞાની હોયગા તો નહીં જાયગા બોલતે, ક્યા કહા? તેમ જ્ઞાની પરજન છોડી, જ્ઞાન નિધિ ને ભોગવે, પોતે સ્વયં જ્ઞાન સ્વરૂપ છે। તો શું થયું? કે એ જ્ઞાન નિધિ છે એટલે પોતાના સ્વભાવને ભોગવે છે, પરજન સાથે રહેતો નથી. બસ અભી ક્યાં લિખતે દેખો, જેમ કોઈ એક દરિદ્રી માણસ નિધિને પામીને પોતાના વતનમાં ગુપ્તપણે રહીને તેના ફળને ભોગવે છે, તેમ જ્ઞાની પરજનોના સમૂહને છોડીને. પરજન યાને કોણ? આપણે રિલેટિવ આસપાસ કે ઇધર ઉધર કે
લૌકિક જન, અન્ય લૌકિક જન, જો
લૌકિક જન જો આસપાસ કે
દૂસરોં કે લિયે પરજન, સબકે લિયે પરજન કહા, ક્યો અપને આત્મામાં ગુપ્ત હો જાયેગે.
રસ્વ કરતે હો દીર્ઘ ચાહિયે ના,
સમૂહ દીર્ઘ ચાહિયે.
ક્યા કહેતે હૈ? પરજનોના સમૂહને છોડીને જ્ઞાન નિધિને ભોગવે છે. ચૈતન્ય સ્વભાવની દૃષ્ટિ પૂર્વક જ 12 ધર્મો હોય છે, એ બિલકુલ અંડરલાઈન કરકે રખના. બિના આત્માનુભૂતિ કે એ 12 પ્રકાર કે જો ધર્મ બતાએ વો નહીં હોંગે. સામા તેમાં સૌથી પહેલા સમ્યક દર્શન ધર્મ છે, તે સમ્યક દર્શન વગેરે ધર્મોનું વર્ણન કરે છે. તેમાં પહેલા અવિરત સમ્યક દ્રષ્ટિનું વર્ણન કરતા સમ્યક દર્શન પામનાર જીવ કેવો હોય તેની યોગ્યતાનું વર્ણન કરે છે.
આગે પડેંગે અવિરત સમ્યક તો કિસકો પ્રાપ્ત હો સકતા હૈ, ઉસકી પાત્રતા ક્યા હોની ચાહીએ. આગળ એ 12 ધર્મોનું સ્વરૂપ પ્રવૃત્તિનું વ્યાખ્યાન કરે છે. સ્વરૂપ પ્રવૃત્તિ કા અર્થ ક્યા હૈ? પ્રવૃત્તિ અને ક્યા મિલિંદભાઈ
આપ જાણતે હૈ?
લક્ષ્મીજી પ્રવૃત્તિ કિસ પ્રવૃત્તિ? હા પ્રાવૃત્તિઓ ને પ્રવૃત્તિ. મંદાબેન સુબહ આને વાલો કો પતા હોના ચાહીએ પ્રવૃત્તિ કા અર્થ. અશ્વિનબેન ભૂલ ગયે પ્રવૃત્તિ? આદિ આદિ
વગેરે વગેરે
વૃષભાદિ, વૃષભાદિ તીર્થંકર
ઇન્હોને બતાયા થા અભી,
વૃષભ આદિ અને વૃષભ પ્રવૃત્તિ એસા કહેંગે હમ. તો સ્વરૂપ આદિ એને અન્ય ભી બાતે બતાએંગે ઉસકે બારે મે જો કોઈ હૈ એને ઉસકે સંબંધ મે વિશેષ વ્યાખ્યાન કરેંગે.
એને બેસિક રિક્વાયરમેન્ટ ફોર હેવિંગ સમ્યક દર્શન કી બાત ચલની હૈ.
12 ધર્મો કા યહાં વર્ણન ચલેગા તો ઉસમે સ્વરૂપ ભી બતાએંગે ઉસકા, ઓર આદિ મે અભી યોગ્યતા ભી બતા રહે ને, સમ્યક દર્શન કા સ્વરૂપ ભી બતાએંગે, ઉસકે પ્રકાર ભી બતાએંગે, વો કિસકો હોતા હૈ વો ભી બતાએંગે, યે સારે આદિ મે આ ગયા. તો 12 ધર્મોનું સ્વરૂપ આદિનું વ્યાખ્યાન કરે છે. ખ્યાલ મેં આવે? પ્રવૃત્તિકાર આદિ ત્યાં પ્રથમ જ અવિરત સમ્યક દ્રષ્ટિનું સ્વરૂપ કહે છે. તેમાં પણ સ્વરૂપ બતાને મેં ભી પહેલે મેં પહેલે ક્યાં બતા રહે? પહેલા સમ્યક્ત્વ ઉત્પત્તિની યોગ્યતાનું નિરૂપણ કરે છે. એ સમ્યક્ત્વ કી ઉત્પત્તિ કિસ જીવ કો હો સકતી હૈ ઉસકી બાત ચલેગી. ક્યાં આવશ્યક કન્ડિશન હૈ? હા તો અભી હમ પડેંગે પહેલા. હા હા એ સો હમને પંચલબ્ધિ મેં યાદ ક્યા થા ના. હા યહાં દેખતે હૈ, યહાં પહેલે મેં પહેલે પ્રથમ ઉપશમ કિસકો હોતા યે બાત નહીં પૂછી, સામાન્ય સમ્યક તો કિસકો હો સકતા હૈ યે બાત પૂછી હૈ. ચતુર્ગતિ ભવ્ય સંગી સુવિશુદ્ધ જાગ્રત પર્યાપ્ત સંસાર તટે નિકટ જ્ઞાની પ્રાપ્નોતિ સમ્યક્ત્વમ. ચતુર્ગતિ ભવ્ય, ચારો હી ગતિઓ વાલો કો સમ્યક્ત્વ હો સકતા હૈ, તિર્યંચ મનુષ્ય દેવ ઓર નાર કી ભી, પરંતુ ઉસમે વો ભવ્ય હોને ચાહીએ, ક્યોંકિ અભવ્યો કો તીન કાલ મેં કભી સમ્યક્ત્વ હો નહીં સકતા. અબ યે તો બાત આઈ હૈ ચતુર્ગતિ મેં ભી લીએ, પણ ઉસમે સંગી હોના આવશ્યક હૈ. દેવનાર કે મનુષ્યો તો સંગી હી હોતે હૈ, પરંતુ તિર્યંચો મેં બહોત વરાયટી હૈ, એકેન્દ્રિય સે સંગી પંચેન્દ્રિય તક. તો યહાં કન્ડિશન ક્યા હૈ? આવશ્યક કન્ડિશન્સ હૈ સબ. તો સંગી જીવ હોને ચાહીએ, સંગી પંચેન્દ્રિય. સુવિશુદ્ધ, અતિ સંકલેશ પરિણામો મેં સમ્યક્ત્વ કી પ્રાપ્તિ નહીં હોતી હૈ, વો સંકલેશ પરિણામો સે વો હટ જાતા હૈ ઓર ઉસકે પરિણામ વિશુદ્ધ હોતે હૈ, મંદતા હોતી હૈ, तो उस मंद परिणामों में उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। आप कहेंगे नरकों में तो हमेशा ही अशुभ लेशा होती है, कपोत होती है, नील होती है, कृष्ण होती है नीचे वालों में, तो उसमें कैसे होगी प्राप्ति? वो तो मारते झगड़ते रहते हैं ना, तो वहां भी जो तीव्र कषाय उनसे हटकर उनकी लेशा तो नहीं बदलेगी, कृष्ण लेशा तो कृष्ण लेशा ही रहेगी, परंतु अत्यंत तीव्रता से हटकर मंदता की ओर, उसी में मंदता की ओर चले जाएंगे, तो उसको कहेंगे वो विशुद्ध हुए, उनके लिए वो विशुद्धि। परंतु मनुष्य और तिर्यंचों में अशुभ लेशाओं में सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी। देवों के तो शुभ लेशा होती है क्योंकि पर्याप्त अवस्था में होगी, ये बात आगे बताएंगे। तो सुविशुद्ध का अर्थ क्या है? वो पहले उनके विशुद्धि होगी और फिर बाद में सम्यक्त्व प्राप्त होगा। जागृत अवस्था में ही होगी, नींद में कभी सम्यक्त हो जाए बाय चांस, अभी स्वाध्याय करके गए और गहरी नींद आ गई है
और सपने में,
हाँ, और तो कोई ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रात में ही हो गया लगता है, यानी उसके बारे में भी निशंक नहीं है। पर्याप्त है, यह आवश्यक कंडीशन है। कौन से? भले देव नारकी में लब्धिया पर्याप्त नहीं होते, फिर भी अन्य बहुत से मरकर आए हैं, तो शुरू में जो जिसको निवृत्ति पर्याप्त कहते हैं, क्या कहा? निवृत्ति पर्याप्त, जब पर्याप्ति बन रही है उस काल में नया सम्यक तो नहीं होता है। पहले भव का हो तो उसकी कंटिन्यूटी होगी वहां पर, उसकी बात नहीं, ये कौन प्राप्त करता है वो बात पूछी है। तो नया किसको उत्पन्न हो सकता है? तो पर्याप्त जीवों को उत्पन्न होगा। पर्याप्ति पूर्ण होती है तो अंतर्मूर्त के पश्चात उसको सम्यक तो प्राप्त करने की योग्यता होगी। ये देवों और नारकियों की बात मैंने बताई अंतर्मूर्त की, बाकी मनुष्यों में तो वो तो 8 वर्ष का होना चाहिए और तिर्यंचों में यथा योग्य। अभी वो सम्मूर्छनों में अलग है, गर्भजों में अलग, उसकी कंडीशन हम बाद में देखेंगे। आगे कहते संसार तटे निकट, तट यानी किनारा, जैसे हम कहते हैं समुद्र तट, वैसे संसार तट यानी संसार का किनारा अभी जिसका नजदीक आया, यानी अभी जिसका मोक्ष नजदीक है। तो मोक्ष नजदीक है किसने डिसाइड किया? सम्यक तो होगा उसी का मोक्ष नजदीक आएगा ना, तो यहां उल्टा कह रहे, जिसका मोक्ष नजदीक है उसी को सम्यक तो होने की योग्यता है। इसका अर्थ प्रत्येक जीव में तो अपना पर्याय का क्रम निश्चित है, तो मोक्ष के अर्लीएस्ट पूर्व में सम्यक तो कब हो सकता है? जैसे किसी के एक पुद्गल परावर्तन बाकी है, उसको सम्यक तो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सम्यक तो होने के पश्चात अर्ध पुद्गल परावर्तन से अधिक काल यह जीव संसार में नहीं रहता, वो नियम से मुक्त हो जाता है। तो किसी को मोक्ष के अर्लीएस्ट पहले में पहले कब होगा? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल पहले। कोई ऐसा भी जीव होगा कि उसी भव में सम्यक तो हुआ और उसी भव में मोक्ष भी चला गया? जरूरी नहीं कि हर जीव को अर्ध पुद्गल परावर्तन पहले ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, परंतु सबसे अर्लीएस्ट कब होगी? तो अर्ध पुद्गल परावर्तन पहले, तो उसको क्या कहेंगे? ये निकट भव्य है, ये भी शब्द आता है, या संसार का किनारा जिसका भी कम रह गया, नजदीक आ गया। संसार तटे निकट ज्ञानी प्राप्नोति सम्यक्त्वम्, ऐसे जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। अब ज्ञानी कहा है, आप कहेंगे ज्ञानी तो है, फिर सम्यक्त्व प्राप्त करने की बात क्या होती है? मिथ्या दृष्टि को होगा सम्यक्त्व कि ज्ञानी को होगा? मिथ्या दृष्टि को, तो ज्ञानी क्यों लिखा है? तो साकार उपयोग में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, ज्ञानो उपयोग में होती है, दर्शन उपयोग में नहीं होती। सम्यक्त्व होने का जो पहला समय है उस समय, क्योंकि वो तो विकल्पात्मक भूमिका में उस पर गहराई से सोचते सोचते तत्व निर्णय की भूमिका तक वहां तक पहुंचता है और अपने शुद्धात्मा का लक्ष्य किया है, तो वो ज्ञान उपयोग में ही उसको सम्यक दर्शन की, क्योंकि आत्मा की अनुभूति है ना, अनुभूति ये क्या है? ज्ञान की पर्याय है। हाँ, तो ये साकार ज्ञान उपयोग में उसको सम्यक की प्राप्ति होती है। तो ज्ञानी यानी सम्यक दृष्टि, ऐसा अर्थ यहां नहीं लेना, ज्ञान उपयोग वाला या साकार उपयोग वाला, प्राप्नोति सम्यक्त्वम यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है। ये साकार उपयोग किसको कहा अमोल, ख्याल में आया? ज्ञान को। ज्ञान उपयोग है, उपयोग के दो भेद हैं, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। तो ज्ञान उपयोग को साकार कहते हैं और दर्शन उपयोग को निराकार कहते हैं, क्योंकि वो डिफरेंशिएट किए बिना ग्रहण करता है। और ज्ञान हाँ पृथक जैसा है वैसा सबको जान लेता है, पृथक पृथक लक्षण सहित उसको, जो वस्तु जैसे उसको जान लेता है उसको ज्ञान उपयोग कहते हैं। अब यहाँ का अर्थ देखते हैं।
देखो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि साकार उपयोग, ये ज्ञान उपयोग है उसको साकार कहा जाता है और दर्शन उपयोग है उसको निराकार कहा जाता है। निराकार का अर्थ ऐसा है कि उसको कोई विशेष भिन्न भिन्न रूप से किसी को अनुभवता नहीं है, सबको एक साथ एज इट इज उसको भेद किए बिना जो हो रहा है जीव का परिणाम
सत्मात्र को ग्रहण करता है
उसको कहेंगे निराकार उपयोग वाला, क्योंकि आज जीव आत्मा का स्वभाव ही उपयोग स्वभाव है। तो उपयोग में भी दो भेद है, ज्ञानोपयोग और एक दर्शनोपयोग। तो ज्ञानोपयोग को साकार उपयोग वाला कहेंगे और दर्शन उपयोग को निराकार उपयोग वाला कहेंगे। तो जो सम्यक भी होगा, होने वाला है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला है, तो वह साकार उपयोगी ही होगा। निराकार उपयोगी वाले को शुरू में
स्टार्टिंग पॉइंट की बात चल रही है, जब सम्यक तो हो जाता है तो बाद में दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग कुछ भी पलटता रहता है उसके।
अभी हम यही रुकेंगे।
ओ
जावानी के ज्ञान ते सूजे लो कालो सोवाणी मस्तकर्ण सदा देत हो। ठीक है।